एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मेजबान
और मैं हूं आपका साथी मेजबान।
आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की परतें खोलने जा रहे हैं जो ऊपर से देखने में तो बड़ा शांत और सुनहरा सा लगता था।
हाँ, लेकिन जिसकी सतह के नीचे
बिल्कुल
मतलब बहुत कुछ उबल रहा था।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं बारबरा टकमन की मशहूर किताब द प्राउड टावर, अ पोर्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द वॉर, 1890-1914 की।
जी हाँ, ये किताब हमें ले जाती है पहले विश्व युद्ध से ठीक पहले के 25 सालों में, मतलब 1890 से 1914 तक यूरोप और अमेरिका की दुनिया।
और इसकी सबसे खास बात क्या है?
बात यह है कि ये उस आम धारणा को चैलेंज करती है कि पहला विश्व युद्ध अचानक से आ गया।
हाँ, जैसे किसी शांत स्थिर दुनिया पर गहर बनकर टूटा हो।
बिल्कुल, टकमन दिखाती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, और मुझे लगता है यही बात इसे आज भी इतनी दिलचस्प बनाती है ना?
सही कहा
कि कैसे बाहरी चमक दमक और तरक्की के पीछे भी गहरे तनाव टकराव छुपे हो सकते हैं। टकमन हमें उस गर्व के मीनार मतलब प्राउड टावर के अंदर झांकने का मौका देती हैं जो बाहर से तो बड़ा मजबूत दिख रहा था
पर अंदर से क्या कहते हैं ना, दरख रहा था।
हाँ, राष्ट्रवाद, वर्ग संघर्ष, नई नई विचारधाराएं, ये सब उस तथाकथित सुनहरे दौर में भी पूरी तरह मौजूद थीं।
तो इस दिलचस्प पड़ताल को शुरू करने से पहले क्यों ना हम लेखिका के बारे में थोड़ी बात कर लें, बारबरा टकमन।
हाँ जरूर, वो थीं कौन और क्यों उनका नजरिया इतना खास माना जाता है,
ये जानना वाकई दिलचस्प है। बारबरा टकमन 1912 से 1989 तक 20वीं सदी की सबसे सम्मानित और लोकप्रिय इतिहासकारों में से एक मानी जाती हैं।
और कमाल की बात यह है, जो मुझे हमेशा हैरान करती है, कि उनके पास इतिहास में कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी।
सच में?
हाँ, वो एक सेल्फ टॉट हिस्टोरियन थी। अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया।
जबरदस्त, और उनकी लिखने की शैली कमाल की थी। मतलब जटिल ऐतिहासिक घटनाओं को किरदारों और कहानियों के जरिए ऐसे जिंदा कर देती थी।
हाँ, जैसे कोई कहानी सुन रहे हो, सिर्फ तारीखें और तथ्य नहीं।
बिल्कुल, उस दौर का माहौल, लोगों की सोच, उनकी भावनाएं, सब कुछ पकड़ने की कोशिश करती थी। और उनकी किताब द गन्स ऑफ ऑगस्ट, पहले विश्व युद्ध की शुरुआत पर,
उसके लिए तो उन्हें पुलित्ज़र पुरस्कार भी मिला था।
जी हाँ,
और द प्राउड टावर एक तरह से देखा जाए तो द गन्स ऑफ ऑगस्ट की पृष्ठभूमि तैयार करती है ना?
सही कहा। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि युद्ध कैसे शुरू हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करती है कि युद्ध क्यों हुआ।
और इसके लिए वो सिर्फ सरकारों या सेनाओं तक ही नहीं रुकी।
नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने उस दौर के समाज, कला, संस्कृति, विचारधाराएं, यहाँ तक के लोगों की साइकोलॉजी को भी अपनी पड़ताल का हिस्सा बनाया।
वो मानती थी कि इतिहास सिर्फ बड़ी अमूर्त ताकतों का खेल नहीं है।
हाँ, बल्कि इंसानी जुनून, महत्वाकांक्षाओं और कभी कभी तो मूर्खताओं का भी नतीजा होता है।
कहा जाता है कि उनका खुद का यहूदी अमरीकी होना और दो विश्व युद्धों को देखना उन्हें उस उथल पुथल भरे दौर को समझने की एक गहरी, एक मानवीय दृष्टि देता था।
ये हो सकता है, बिल्कुल। तो अब आते हैं किताब पर। द प्राउड टावर है क्या ये असल में?
जैसा हमने शुरू में कहा, ये 1890 से 1914 के बीच पश्चिमी दुनिया मतलब यूरोप और अमेरिका का एक सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास है।
लेकिन ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है, मतलब साल दर साल आगे बढ़ने वाली कहानी नहीं है ये।
बिल्कुल नहीं, टकमन ने इसे एक अलग अंदाज में लिखा है, जैसे 8 अलग अलग निबंध हो उनका एक संग्रह, एक मोज़ेक जैसा।
हाँ, मोज़ेक सही शब्द है। हर निबंध उस दौर की किसी एक खास पहलू पर रोशनी डालता है।
जैसे?
जैसे ब्रिटेन का शासक वर्ग पेट्रिशियंस, फिर अराजकतावादी आंदोलन, अमेरिका का साम्राज्यवाद की तरफ झुकाव,
और फ्रांस को हिलाकर रख देने वाला ड्रेफस कांड।
हाँ, वो भी, फिर शांति के नाम पर हुए हेग सम्मेलन, जर्मनी का वो अजीब सा सांस्कृतिक माहौल,
और समाजवाद का उदय और फिर उसका बिखराव।
तो इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर टकमन एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं।
बिल्कुल, वो दिखाती हैं कि भारी शांति और तरक्की के नीचे कितनी गहरी चिंताएं, टकराव और विघटनकारी ताकतें काम कर रही थीं।
उनका मुख्य तर्क क्या है फिर?
उनका मुख्य तर्क ये है कि 20वीं सदी की जो भयानक घटनाएं हुई उनके बीज 19वीं सदी के आखिर के इसी तथाकथित गौरवशाली दौर में बोए जा चुके थे।
ये वो गर्व का मीनार था जो अपनी ऊंचाई पर इतरा तो रहा था।
हाँ, पर उसकी नींव कमजोर हो रही थी।
तो चलिए इस मोज़ेक के कुछ अहम टुकड़ों को जरा नजदीक से देखते हैं। पहला अध्याय है द पैट्रिशियंस,
हाँ, ब्रिटेन का शासक वर्ग, उस समय का एलीट क्लास।
टुकमन दिखाती हैं कि लॉर्ड सैलिसबरी जैसे नेता और उनका वर्ग कितना शक्तिशाली था, कितना अमीर और कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ। उन्हें लगता था कि भाई शासन करना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है।
लेकिन इसी आत्मविश्वास के पीछे एक डर भी छिपा था, है ना?
बिल्कुल। टुकमन बताती हैं कि ये वर्ग लोकतंत्र के बढ़ते प्रभाव, मजदूर आंदोलनों और समाज में आ रहे बदलावों से कितना मतलब कटा हुआ था और चिंतित भी था।
उनकी दुनिया पुरानी परंपराओं और विशेष अधिकारों पर टिकी थी। शानदार जरूर थी,
हाँ, पर नाजुक, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। ये उस पुरानी दुनिया के ढलने की शुरुआत थी एक तरह से।
और इस पुरानी दुनिया को सबसे तीखा चैलेंज कहां से मिल रहा था?
वो थे अराजकतावादी, जिन पर दूसरा अध्याय है, एनार्किस्ट्स।
ये वो लोग थे जो किसी भी तरह की सरकार, चर्च या निजी संपत्ति के पूरी तरह खिलाफ थे।
हाँ, तकमन न सिर्फ उनकी विचारधारा को समझाती हैं, बल्कि उनके तरीकों पर भी रोशनी डालती हैं, जिसे वो कर्म द्वारा प्रचार या प्रोपेगेंडा बाय डीड कहते थे,
जिसमें राजनीतिक हत्याएं और बम धमाके शामिल थे। लेकिन टुकमन उन्हें सिर्फ आतंकवादी या पागल कहकर खारिज नहीं करती, ये बात ध्यान देने वाली है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहती हैं कि अराजकतावादी संख्या में कम जरूर थे, पर वे उस दौर के गहरे असंतोष और निराशा का प्रतीक थे, एक सिम्टम थे।
वो इस बात का सबूत थे कि समाज का एक हिस्सा मानता था कि पूरी व्यवस्था ही सड़ चुकी है और इसे जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है।
हाँ, जैसा कि एक विचार है किताब में, वे पागल नहीं थे बल्कि समाज की असमानताओं से पागल बना दिए गए थे। ये एक बहुत पावरफुल लाइन है।
समाज के अंदर का ये टकराव फ्रांस में और भी खुलकर सामने आया ड्रेफिस कांड के रूप में, जिसका जिक्र गिव मी कॉम्बैट अध्याय में है।
हाँ, कैप्टन अल्फ्रेड ड्रेफिस, एक यहूदी सैन्य अधिकारी जिन पर 1894 में जासूसी का झूठा आरोप लगा और उन्हें जेल भेज दिया गया।
और ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहा।
नहीं, ये पूरे फ्रांसीसी समाज को दो फाड़ कर गया। एक तरफ थे वो लोग जो न्याय, व्यक्ति के अधिकारों और गणराज्य के मूल्यों की बात कर रहे थे,
और दूसरी तरफ
सेना, चर्च और यहूदी विरोधी ताकतों का गठबंधन था, जो राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सच को दबाना चाहता था।
टुकमन दिखाती हैं कि कैसे इस एक केस ने फ्रांस में मौजूद गहरी यहूदी विरोधी भावना, राष्ट्रवाद के खतरनाक रूप और ताकतवर संस्थानों की अपनी इज्जत बचाने की प्रवृत्ति को उजागर कर दिया।
हाँ, ये समाज के अंदर सुलग रही आग के फटने जैसा था, एक ज्वालामुखी की तरह।
एक और दिलचस्प अध्याय है हेग शांति सम्मेलनों पर, द स्टेडी ड्रमर।
हाँ, ये तो शांति के नाम पर हो रहे पाखंड, हिपोक्रेसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। 1899 और 1907 में दुनिया भर के देश हेग में इकट्ठा हुए।
किस लिए?
ताकि शांति बनाए रखने और हथियारों की होड़ कम करने के तरीकों पर बात कर सकें।
सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है।
हाँ, लगता तो है, लेकिन टुकमन बताती हैं कि ये सम्मेलन काफी हद तक मतलब दिखावा थे।
अच्छा।
मेटा मंच पर शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे उनके देश इतिहास की सबसे बड़ी हथियारों की दौड़ में शामिल थे।
खासकर ब्रिटेन और जर्मनी के बीच नौसेना को लेकर जबरदस्त मुकाबला चल रहा था।
बिल्कुल, तो इन सम्मेलनों से शांति तो नहीं आई, हाँ, बढ़ते सैन्यवाद पर पर्दा डालने का काम जरूर हुआ। ये उस चीज का एक शुरुआती उदाहरण था जिसे आज हम शायद वर्चू सिग्नलिंग या दिखावटी नेकी कह सकते हैं।
जर्मनी का जिक्र आया तो उस पर भी एक अध्याय है, नीरोइज्म इज इन द एयर।
हाँ, ये काइसर विल्हेम द्वितीय के जर्मनी के सांस्कृतिक और बौद्धिक माहौल की पड़ताल करता है।
टुकमन क्या मानती हैं जर्मनी के बारे में?
वो मानती हैं कि जर्मनी उस समय जबरदस्त औद्योगिक ताकत, ऊर्जा और रचनात्मकता वाला देश था, लेकिन ये सारी ऊर्जा एक बेचैन, आक्रामक और अस्थिर दिशा में जा रही थी।
वो इसमें दार्शनिक फ्रेडरिक नीचे के विचारों जैसे शक्ति की इच्छा, विल टू पावर और सुपरमैन,
हाँ, और संगीतकार रिचर्ड स्ट्रॉस के जोशीले संगीत के प्रभाव को भी देखती हैं।
उनका तर्क है कि ये सांस्कृतिक माहौल केसर के अप्रत्याशित नेतृत्व और एक तरह की राष्ट्रीय असुरक्षा की भावना,
हाँ, इन सब ने मिलकर सैन्यवाद को बढ़ावा दिया। एक सोच पनप रही थी कि जर्मनी को अपनी ताकत के बल पर यूरोप पर हावी होना चाहिए।
और आखिर में किताब का अंतिम अध्याय समाजवादियों पर है, द डेथ ऑफ जोरस।
ये अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की बड़ी उम्मीदों और फिर उसकी नाकामयाबी की कहानी है। सेकंड इंटरनेशनल याद है? दुनिया भर की समाजवादी पार्टियों का महासंघ।
हाँ, उनका मानना था कि मजदूर वर्ग के हित देशों की सीमाओं से ऊपर हैं।
बिल्कुल, उन्होंने संकल्प लिया था कि अगर पूंजीवादी सरकारें युद्ध छेड़ती हैं तो सभी देशों के मजदूर एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे, लड़ने से इनकार कर देंगे।
इस उम्मीद के सबसे बड़े प्रतीक थे जीन जोरस, फ्रांस के प्रभावशाली समाजवादी नेता।
हाँ, जो शांति के लिए लगातार आवाज उठा रहे थे। लेकिन जब जुलाई 1914 में युद्ध के बादल मंडराने लगे तो हुआ क्या?
राष्ट्रवाद का ज्वार इतना ऊंचा उठा कि मजदूरों की अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का आदर्श उसमें बह गया।
दुखद है, पर यही हुआ। 31 जुलाई 1914 को युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक फ्रांसीसी राष्ट्रवादी ने जोरस की हत्या कर दी।
जोरस की मौत शांति की आखिरी उम्मीद के टूटने जैसी थी।
हाँ, कुछ ही दिनों में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सब देशों की समाजवादी पार्टियों ने भी अपनी अपनी सरकारों के युद्ध प्रयासों का समर्थन कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा राष्ट्रभक्ति के सामने हार गया।
तो इन सभी अध्यायों और कहानियों से कुछ बड़े विषय या संदेश उभर कर सामने आते हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल।
पहला और सबसे साफ है सुनहरे युग का भ्रम। टकमन हमें बार बार याद दिलाती हैं कि सतह पर दिखने वाली शांति, समृद्धि और शानो शौकत अक्सर अंदरूनी कलह, हिंसा और अन्याय को छुपाए रखती है।
वो प्राउड टावर शायद बाहर से भव्य था पर अंदर से कमजोर हो रहा था, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए।
दूसरा महत्वपूर्ण विषय है पुरानी व्यवस्था का पतन और नई ताकतों का उदय।
हाँ, पारंपरिक अभिजात वर्ग की पकड़ ढीली पड़ रही थी और लोकतंत्र, मजदूर आंदोलन, समाजवादी पार्टियां और एक नया ज्यादा मुखर मध्य वर्ग ताकतवर हो रहा था।
ये बदलाव जरूरी था लेकिन इसने समाज में काफी उथल पुथल भी मचाई, स्टेबिलिटी हिल गई थी।
तीसरा और शायद सबसे चिंताजनक विषय, राष्ट्रवाद की जबरदस्त ताकत।
टिकमन दिखाती हैं कि उस दौर में राष्ट्रवाद सबसे शक्तिशाली विचारधारा बनकर उभरा और अंततः सबसे विनाशकारी भी।
चाहे वो ड्रेफस कांड हो, जर्मन सैन्यवाद हो, अमेरिकी विस्तारवाद हो या समाजवादियों का राष्ट्र के नाम पर एकजुट हो जाना, हर जगह राष्ट्रवाद की भूमिका अहम थी।
इसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वर्ग चेतना जैसे विचारों को पीछे धकेल दिया।
चौथा है समाज के भीतर गहरे विभाजन। ऐसा नहीं था कि देश बस बाहरी दुश्मनों से लड़ रहे थे, वे अंदर से भी बटे हुए थे।
जैसे फ्रांस गणराज्य और प्रतिक्रियावादी ताकतों के बीच बंटा था।
हाँ, और ब्रिटेन में अमीर और गरीब के बीच की खाई, आयरलैंड का सवाल, महिलाओं के वोट का अधिकार, ये सब बड़े मुद्दे थे। अमरीका अपनी बढ़ती ताकत और दुनिया में अपनी भूमिका को लेकर संघर्ष कर रहा था।
ये अंदरूनी लड़ाइयां भी कहीं न कहीं बड़े युद्ध की जमीन तैयार कर रही थीं।
और पांचवा, तर्क और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नाकामी।
हेग सम्मेलनों का खोखलापन और समाजवादी आंदोलन का युद्ध रोकने में विफल होना दिखाता है कि उस दौर में तर्कसंगत और शांतिपूर्ण समाधान कितने नाजुक थे।
राष्ट्रीय भावनाएं, डर और महत्वाकांक्षाएं अक्सर तर्क पर हावी हो जाती थी।
और छठा, विचारों और संस्कृति की भूमिका।
हाँ, टेकमन ये भी दिखाती हैं कि इतिहास सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक ताकतों से नहीं बनता। विचार जैसे नीचे का दर्शन या अराजकतावादी सिद्धांत और कला जैसे स्ट्रॉस का संगीत भी लोगों की सोच और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारे समय में कौन से विचार और सांस्कृतिक रुझान समाज को दिशा दे रहे हैं।
बिल्कुल, इस किताब में ऐसी कई बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं और मतलब याद रह जाती हैं।
हाँ, कुछ ऐसे ही सार के मुख्य विचारों पर बात करते हैं जो उस दौर की नब्ज पकड़ते हैं।
एक विचार जो किताब की भूमिका में ही है वो उस पुराने विश्व की दोहरी प्रकृति के बारे में है। टकमन लिखती हैं कि उसमें एक तरफ भव्यता, जुनून, समृद्धि और सुंदरता थी
तो दूसरी तरफ गहरा अन्याय, पाखंड, दुख और अभाव भी था।
हाँ, ये उस सुनहरे दौर के मिथक को सीधी चुनौती है। तस्वीर उतनी गुलाबी नहीं थी जितनी बताई जाती है।
अराजकतावादियों के बारे में वो जो कहती हैं वो भी बहुत गहरा है। वे केवल पागल नहीं थे बल्कि समाज की असमानताओं से पागल बना दिए गए थे।
ये उनकी हिंसा को सही नहीं ठहराता, बिल्कुल नहीं, पर यह जरूर दिखाता है कि उनकी हरकतें सिर्फ कुछ भटके हुए लोगों का काम नहीं थी
बल्कि उस समाज की गहरी बीमारियों का लक्षण थी जहां बहुत से लोग खुद को कटा हुआ और अन्याय का शिकार महसूस करते थे।
और समाजवादियों की नाकामी पर यह बात बहुत सटीक लगती है। जब चुनाव का क्षण आया तो मजदूरों का अंतर्राष्ट्रीयतावाद राष्ट्रवाद की प्रचंड लहर में डूब गया।
ये दिखाता है कि युद्ध के समय राष्ट्रीय पहचान और देशभक्ति की भावना अक्सर वर्ग या विचारधारा जैसे बंधनों से ज्यादा मजबूत साबित होती है। ये एक दुखद सच्चाई है आज भी शायद।
हाँ, और युद्ध के प्रति जो एक रोमांटिक, लगभग खतरनाक नजरिया कुछ हलकों में पनप रहा था, खासकर फ्रांस के दक्षिण पंथियों में,
उसका जिक्र भी चौंकाने वाला है।
हाँ, एक जगह उनके नजरिए को कुछ इस तरह बयान किया गया है, युद्ध ही एकमात्र उपाय है। यह भव्यता महिमा का सपना है, खून सुंदरता और मौत का सपना।
ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे कुछ लोग युद्ध को एक जरूरी, शुद्ध करने वाली, यहाँ तक कि आकर्षक चीज मानने लगे थे।
ऐसी सोच के साथ तबाही का जोखिम उठाना आसान हो जाता है।
ये सब पढ़कर लगता है कि 100 साल से ज्यादा पुरानी बातें हैं, लेकिन इनके सबक आज भी कितने प्रासंगिक है ना।
हाँ बिल्कुल, जैसे सुनहरे युगों पर हमेशा शक करना।
हाँ, जब भी कोई कहे कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये तो स्वर्ण काल है, तो टकमन की किताब हमें याद दिलाती है कि सतह के नीचे जरूर देखना चाहिए।
अक्सर तरक्की और शांति के दावों के पीछे तनाव और समस्याएं छिपी हो सकती हैं। ये हमें अपने समय के प्रति ज्यादा सजग और आलोचनात्मक बनाता है।
और सामाजिक विभाजन के चेतावनी संकेतों को पहचानना।
हाँ, ड्रेफिस कांड ने दिखाया कि कैसे एक घटना पूरे देश को बांट सकती है और समाज में छिपे जहर को बाहर ला सकती है।
आज भी जब हम अपने आसपास गहरा ध्रुवीकरण, नफरती भाषण या संस्थाओं पर हमले देखते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि कहीं ये भी आने वाले किसी बड़े संकट के संकेत तो नहीं।
राष्ट्रवाद का स्थायी खतरा, टकमन का काम इस बात की जोरदार चेतावनी है कि राष्ट्रवाद जब आक्रामक और दूसरों से नफरत करने वाला रूप ले लेता है तो कितना खतरनाक हो सकता है।
ये तर्क नैतिकता और यहाँ तक कि अपने फायदे के विचार पर भी हावी हो सकता है।
आज की दुनिया में जहाँ राष्ट्रवाद फिर से एक बड़ी ताकत बन रहा है, ये सबक बहुत महत्वपूर्ण है।
नेताओं को उनके कामों से आंकना, न कि सिर्फ बातों से। हेग शांति सम्मेलन इसका सटीक उदाहरण है।
हाँ, नेता शांति की बातें कर रहे थे और साथ ही हथियार बना रहे थे। ये हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ घोषणाओं और भाषणों पर नहीं जाना चाहिए,
बल्कि असल नीतियों, बजट और जमीनी हकीकत पर ध्यान देना चाहिए।
और आखिर में विचारों के नतीजे होते हैं। ये किताब दिखाती है कि विचार सिर्फ किताबों या बहसों तक सीमित नहीं रहते।
हाँ, वे लोगों की राय बनाते हैं, माहौल तैयार करते हैं और आखिरकार दुनिया में होने वाले कामों को दिशा देते हैं, चाहे अच्छे के लिए या बुरे के लिए।
यह हमें सार्वजनिक जीवन में विचारों के महत्व और उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराता है।
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि इतिहास की बड़ी त्रासदियां अचानक नहीं होती। पहला विश्व युद्ध कोई आसमान से नहीं टपका था। वो उन सालों के अनसुलझे तनावों, खतरनाक विचारधाराओं और अक्सर अंधी या अक्षम नेतृत्व का नतीजा था। ये दिखाता है कि चीजों के पीछे के जटिल कारणों को समझना कितना जरूरी है, बजाय आसान जवाबों के।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि जिन ताकतों ने 1914 की दुनिया को तोड़ा, अंधा राष्ट्रवाद, गहरी सामाजिक नफरत, राजनीतिक ध्रुवीकरण, हिंसा का आकर्षण, वो आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं।
ये बात सोचने वाली है।
हाँ, ये किताब सिर्फ अतीत का विश्लेषण नहीं है, ये एक तरह से सभ्यता की नाजुकता पर एक टिप्पणी भी है। ये हमें याद दिलाती है कि शांति और स्थिरता को हल्के में नहीं लेना चाहिए और अपने समय की दरारों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।
ये सिर्फ तथ्यों का ब्यौरा नहीं, बल्कि उस दौर की बेचैनी और आने वाले तूफान की आहट को महसूस कराती है।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।